ऑप्शन डी, एक बहुत बहुत पुराने गांव में एक बहुत बहुत पुराना चर्च था। चर्च जरा जीर्ण हो चुका था, खंडहर सा था, लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया था, या कहो कि लोग उस चर्च से भयभीत थे क्योंकि वो चर्च अब गिरा तब गिरा। लोगों ने उस चर्च के इर्द गिर्द घूमना भी बंद कर दिया था, ऐसी उस चर्च की हालत थी। हवाएं चलती तो लगता कि जैसे दीवारें गिर जाएगी, इतना जर्जर वो चर्च हो चुका था। यहां तक कि उस चर्च के जो पादरी थे वो भी वहां नहीं रहते थे, परंतु फिर भी गांव गांव घूम घूम कर वो लोग कहते थे कि चर्च में आओ, प्रभु के मंदिर में आओ, पर वो खुद भी वहां नहीं रहते। वो चर्च फिर भी खड़ा था, जिंदा था। वास्तव में जो जर्जर हो गया उसे गिर जाना चाहिए, परंतु वो खड़ा था। चर्च के जितने ट्रस्टी थे उन सभी ने एक मीटिंग बुलवाई और मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित हुए। उस कमिटी में कुछ प्रस्ताव स्वीकार हुए। पहला प्रस्ताव था, जो पुराना चर्च है, जो जर्जर हो गया है, उसे गिरा दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि एक नए चर्च का निर्माण किया जाए। तीसरा प्रस्ताव था कि नए चर्च का निर्माण उसी स्थान पर होगा जहां पुराना चर्च है। नए चर्च में वही द्वार दीवारें लगेंगे जो पुराने चर्च के हैं। नए चर्च में वही ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पुराने चर्च में थी। तीनों ही प्रस्ताव स्वीकार हुए। पहला, नया चर्च बनना है। दूसरा, पुराने को नष्ट करना है। और तीसरा, पुरानी चर्च की सामग्री से ही नए चर्च की सामग्री खड़ी होगी, लगानी है। परंतु एक चौथा प्रस्ताव भी पारित हो गया, और वो चौथा प्रस्ताव था, जब तक नया चर्च नहीं बन जाता पुराना हम नहीं गिराएंगे। वो चर्च आज भी वैसे ही खड़ा है। जब तक नया नहीं बन जाता पुराना हम नहीं गिराएंगे। पुराने से आसक्ति, पुराने के आदि चेतना हो गई है। नया उसे समझ में आता है, परंतु पुराने से लगाव है, पुराने से आसक्ति है। पुराना दुखदाई है, पुराना परेशान करता है, पुराना अशांत करता है, परंतु आत्मा को आदत अशांति की हो गई है। शांति वो चाहती है, परंतु अशांति छोड़ना नहीं चाहती। परेशानी से मुक्त होना चाहती है, परंतु आज नहीं कल। दुख कोई नहीं चाहता, परंतु एडिक्शन दुख का ही है, दुख का ही व्यसन है। गहरे में हमें कामना है कि वो बना रहे, हाँ, परंतु मीटिंग हम भी कर रहे हैं, हाँ, परंतु ऊपर से हम भी यही दिखावा करते हैं, हाँ, ऊपर से हम भी यही प्रण संकल्प रिजोल्यूशन करते हैं कि पुराना सब खत्म हो जाए, पुरानी सारी आदतें हमको उखाड़ कर फेंक देनी है। पुरानी आदतों को नष्ट करने का उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है, परंतु उन आदतों को समझने का उत्साह कम है, और बिना उनको समझे उन्हें फेंका नहीं जा सकता। इस वाक्य को अपनी डायरी में नोट करके रखना है। जब तक पुरानी आदतों को हम नहीं समझते, केवल संकल्प करके उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। जितने मोटिवेटेड उत्साहित हम आदतों को समाप्त करने के लिए है, उससे कई गुना अधिक मोटिवेशन आवश्यक है उन आदतों को समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत गहरी है। न्यू ईयर, ईयर शब्द के दो अर्थ होते हैं, या दो प्रकार के स्पेलिंग है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन की किसी ने परिभाषा की है, वो संकल्प जो पुराने से निकलता है, नए में प्रवेश करता है और निकल जाता है, जो ओल्ड ईयर से निकलकर नए ईयर से बाहर आता है। ईयर का एक अर्थ होता है ईयर, ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन अर्थात एक ईयर से प्रवेश करता है और दूसरे ईयर से बाहर। पुराने से आ सकती, चाहे वो पुराना जीवन हो, चाहे पुराना शरीर हो, चाहे पुराने संकल्प, पुराने पोल, पुराने चलन, संबंध, संपर्क, पुराना मन, जो कुछ पुराना है उससे आ सकती है। और एक स्वप्न जगत में हम जीते हैं, और उस स्वप्न जगत को हम तोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारा विशेष कर्तव्य क्या है आज की मुरली में? किस लिए उमंग उत्साह है तुम में? किस लिए इतना उड़ रहे हो? सब कुछ नया बनाने के लिए, प्रकृति नई हो जाए, आत्माएं नई हो जाए, सब कुछ नया नया नया। पुरानी चीजें अच्छी तो लगती है, परंतु कहाँ रखने के लिए? संग्रहालय में अच्छी लगती है, यादगार के रूप में अच्छी लगती है, प्रयोग करने के लिए नहीं। अभी नाउ, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी नाउ ईयर। नाउ अर्थात अभी, इस पल, दिस मोमेंट, अभी करना है। मरीज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? स्वप्न में बंदर दिखते हैं और वो रोज फुटबॉल खेलते हैं, कोई दवा दो। बहुत परेशान होता हूं। डॉक्टर कहता है ये दवा ले लो, रात में सोने से पहले खा देना, सो जाना, समस्या समाप्त हो जाएगी। वो कहते हैं आज नहीं, कल से खाऊंगा, आज फाइनल है। कहां पर फाइनल है? स्वप्न में। स्वप्न इतना सुंदर है, हमारा स्वनिर्मित है, हम उसे तोड़ना नहीं चाहते। और भगवान आया है हम सबके, वो पुराने जो स्वप्न है, वो भ्रम जाल है, वो जो मकड़ी का जाल है, उन सभी स्वप्नों को, उन सभी भ्रमों को, उन सभी अज्ञान की निद्रा को, विस्मृति को, तंद्रा को तोड़ने। और जब हमें कोई नींद से उठाए तो अच्छा लगता है क्या? किसको अच्छा लगता है? कोई नींद से जबरदस्ती उठा दे और हमें अच्छी नींद आ रही है, हम स्वप्न देखे जा रहे हैं, पांच सुबह की व्यक्त वाणी। भगवान कौन है? विश्व नव निर्माता और विश्व का बाप। और हम कौन है? हम सब कौन है? समीप के साथी, सहयोगी तो वो भी है, प्रकृति भी सहयोगी है, वैज्ञानिक भी सहयोगी है, परंतु तुम समीप के साथी हो। किस कार्य में सहयोगी हो? भगवान आया है इस विश्व का परिवर्तन करने, इस विश्व को बदलने। संसार की यह इमारत जर्जर हो चुकी है, बिना मृत्यु के नया जन्म नहीं हो सकता। नए जन्म से पहले क्या चाहिए? मृत्यु। कौन मरना चाहता है? कोई नहीं। परंतु बिना डेथ के रिबर्थ हो ही नहीं सकता। और ब्राह्मण जीवन अर्थात द्विज, नव जीवन, नव संकल्प, नई घड़ी, नया सेकंड, नए बोल, नई मनसा, नई वाचा, नई स्मृति, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नए स्वप्न, नए यादें, नई कल्पनाएं, नया भोजन, नया देखना, नया लिखना, नया खाना, नया सुनना, नई चलन, नए संबंध, नए संपर्क, नया शरीर, नए संस्कार, नई बुद्धि, सब कुछ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू आईज, हैप्पी न्यू टंग, हैप्पी न्यू राइटिंग, हैप्पी न्यू फूड, सब कुछ नया। नवीनता के तीन अर्थ है। न्यूनेस की तीन प्रकार की परिभाषा है। पहली बीती सो पीती, पहली पुराने को नष्ट कर देना, पहली पुराने को भूल जाना, दूसरा नवीनता अर्थात रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, तीसरा नवीनता अर्थात परिवर्तन। और आज की मुरली में नवीनता की परिभाषा है नवीनता अर्थात विशेषता। तो नवीनता लाना अर्थात पुराना जो कुछ है उसे खत्म, किताब बंद, हिसाब खत्म। लोग क्या करते हैं? जला देते होशियार और कम होशियार, दो प्रकार के बच्चे। जो कम होशियार है उनके साथ क्या होता है? उधार और कर्ज, कर्ज में अटके रहते, उधार में फंसे रहते, कर्ज में अटक जाते हैं और उधार में फंस जाते हैं। तो पुरानी सारी चौपड़ी, पुरानी सारी किताबें, पुराने सारे रजिस्टर लेजर्स खत्म। संकल्प करना है नव जीवन का। आज जो भी हुआ, आज तक जो कुछ हुआ, सब एक तरफ। आई बिगिन नाउ, मैं अब शुरुआत करता हूं। अतीत दर्दनाक है, ट्रॉमेटिक है, कलहकारी है, वेदना से भरा है। जो है हो चुका है, अब वो मुझे भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अतीत है, क्योंकि वो डेड है, क्योंकि वो पास्ट है। केवल वर्तमान ही सत्य है। अतीत और भविष्य सूडो टाइम है, झूठा है। समय समय है ही नहीं, वो झूठा है। सत्य केवल ये पल है। इस पल में सदी छिपी हुई है। पास्ट केवल मेमोरी है, फ्यूचर केवल कल्पना, इमेजिनेशन है। सत्य क्या है? अब अभी सभी यहां बैठे हैं, बस इस पल ही, ये पल ही सत्य है। कल क्या होगा, रात क्या होगा, आज क्या हुआ, बुद्धि से सब हटा देना है, केवल इस पल को सफल करो, इस पल को नया बना दो, दैट्स इट। तो क्या देखा बाबा ने, सबसे पहले तुम कौन हो, तो हम कौन हैं, समीप साथी। दूसरा, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, नवीनता। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, संसार को नया बनाना। तीसरा, प्लानिंग तुम्हारी किस किस के लिए है, पांच, स्वयं के लिए, समीप की आत्माओं के लिए, परिवार में जो दूर है उनके लिए, चौथा विश्व की सेवा के लिए, और पांचवा प्रकृति के लिए। नववर्ष है, प्लानिंग बनाओ। किसके लिए प्लानिंग बनाएंगे, सबसे पहली प्लानिंग स्वयं के लिए, अपना एक नया वर्षन तैयार करना है, स्वयं के लिए प्लानिंग। समीप की जो आत्मा है उनके लिए प्लानिंग, थोड़ी दूर की जो आत्मा है उनके लिए प्लानिंग, विश्व की सेवा की प्लानिंग, इस प्रकृति के लिए प्लानिंग, प्रकृति को भी पावन करना है। तो ये 5 पॉइंट प्लानिंग है इस नए वर्ष के लिए, खुद के लिए, समीप की आत्माएं, दूर की आत्माएं, विश्व और प्रकृति। नवीनता किस में लाने के लिए कहा बाबा ने आज, स्वयं में तो है पर कौन सी, जादू मंत्र, कौन सा जादू मंत्र, जादू हो गया, जादू अर्थात मिराकल, ऐसा अनुभव हो जाए कि ये तो जादू हो गया। जादू हो जाता है तो खुशी होती है ना, अचानक जो चाहते थे और नहीं मिल रहा है और अचानक मिल जाए, जादू, जादू मंत्र। लोग मंत्रों के पीछे कितना भागते हैं, किस लिए, किस लिए, शॉर्टकट है, मंत्र मिल जाए को एक बस, वशीकरण मंत्र, पति को वश में कैसे करे, वशीकरण मंत्र। मंत्र है संसार में, मेडिकल में कहते हैं कि 70% बीमारियां जो है कहीं ना कहीं झूठी है, और झूठी बीमारियों के लिए झूठे इलाज की आवश्यकता होती है। संसार में पता नहीं कितने मंत्र है, तंत्र है, ताबीज है, क्या कुछ नहीं है, वो सब किस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर बीमारी सत्य है, बीमारी सही है, तो बिना दवाई के इलाज कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर बिना दवाई के अगर इलाज हो गया है तो शायद बीमारी ही झूठी थी। इसलिए संसार में क्या कुछ नहीं है, ताबीज, मंत्र, तंत्र, भभूति, नींबू, क्या कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो गया कि वो जब सो रहा था मुंह खोल कर तो एक सांप उसके मुंह के अंदर चला गया, और उसका ये वहम इतना गहरा था, इतना गहरा कि उसने कई सारे इलाज कराए, लोग डॉक्टरों ने उसके एक्सरे निकाले, MRI, CT स्कैन, सब कुछ उसको बताया कि कहीं कुछ भी नहीं है। वो मानने को ही नहीं तैयार था, क्योंकि उसे उस सांप की आवाज पेट से आती थी जब सांप चलता था, सांप की फुंकार, और उसका ये निश्चय था कि विश्वास था कि मेरे पेट में सांप है, और बहुत दुखी था और मुझे इलाज कराना है, किसके पास जाऊं, संसार के सारे डॉक्टर फेल। एक मदारी को पता चला, उसने कहा मैं ठीक करता हूं तुम्हारी बीमारी, कौन कहता है सांप नहीं है, सांप है, लेट जाओ अब भी इलाज किए देता हूं। चादर उड़ा दी, मदारी ने अपना ही सांप नीचे डाल दिया। चादर से निकलता हुआ सांप उस आदमी ने देखा और उसे विश्वास हो गया कि सांप जो पेट में था वो निकल गया। और उस मदारी ने कहा, देखो ये है सांप, कहां है वो सारे मूर्ख डॉक्टर्स जो कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तब कहीं उसका एकदम से विश्वास हो गया और खाली खाली अच्छा लगने लगा उसे, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। बीमारी झूठी थी तो इलाज भी झूठा ही होना चाहिए। और हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां झूठी ही है, इसीलिए इलाज काम नहीं करते, इसीलिए सभी डॉक्टर्स मूर्ख है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अभी भी एक अच्छे डॉक्टर की तलाश जारी है। जैसे ही पता चलता है उसके पास हम पहुंच जाते हैं अपनी सारी फाइलों को लेकर। मंत्र संसार में बहुत है, जाते हैं लोग मंत्र लेते हैं और जाप करते रहते हैं। और ठीक भी हो जाते हैं, ताबीज पहनते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो झाड़ फूंक वाले कर देते हैं। जितना इलाज रहस्यमय हो, जितना इलाज कहीं दूर हो, जितना इलाज करने की जो यात्रा है उस व्यक्ति तक पहुंचने की कठिन हो, उतना जल्दी मरीज ठीक होता है। उसको पता वहां दूर पहाड़ी पर काली घाटी के पीछे वो व्यक्ति है, वो किसी के पास जाता नहीं, तुमको जाना पड़ेगा उसके पास। वो पैसे भी नहीं लेता और विश्वास बढ़ता है, ज्यादा ठीक होता है व्यक्ति, क्योंकि बीमारी झूठी है तो इलाज भी झूठा होना चाहिए। परंतु भगवान एक ऐसा मंत्र देते हैं, एक ऐसा मंत्र कि जो आज तक किसी ने नहीं दिया। उसका प्रयोग अज्ञात रूप से कईयों ने किया अपने जीवन में, और जब जब किया द्वापर युग से उन्हों को फायदा हुआ, पर भगवान ने आज उसे मंत्र के रूप में कहा है। और वो मंत्र है शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं। जैसे वाणी की सेवा कर रहे हो, जैसे वाणी की सेवा में उमंग उत्साह है, जैसे वाणी की सेवा के लिए भाग दौड़ करते हो, जैसे वाणी की सेवा नेशनल इंटरनेशनल वर्गीकरण सब कुछ कर रहे हो, उसी तरह अब उस वाणी की सेवा के साथ मन को जोड़ दो। इसका मेल, इसका बैलेंस, इसको मिश्रित कर दो, इसको जोड़ दो। इस जोड़ से जो निर्माण होगा वो होगा मंत्र, जादू का मंत्र। और इस जादू के मंत्र से 10 बातें होगी जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। क्या कर दो ऐसा मंत्र? मंत्र के फायदे भी तो चाहिए। मंत्र अगर दे दे कोई और फायदा कुछ भी नहीं हो और हम वैसे ही जाप करते रहे तो कौन मानेगा कि ये शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। मंत्र बीज की तरह होता है, साधक को गुरु के द्वारा मिलता है और फिर मंत्र की वो साधना करता है और साधना करते 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 वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और आत्माएं सिद्धि को प्राप्त करती है। तो बाबा ने आज ये जो मंत्र दिया कि हरेक आत्मा के प्रति क्या हो मन में, शुभ भाव, ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। रोज अमृत वेला सारी आत्माओं को इमर्ज करना, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे चित परिचित है, एक एक को एनालाइज करना, एक एक को देखना, ये क्या इसके प्रति मन में शुभ भाव है, क्या इसके प्रति शुभ कामना है, क्या इसके प्रति शुभ दुआएं, या प्यार में कहा ऐसी शुभ दुआएं देने वाले मास्टर सद्गुरु आत्माओं को परमात्मा दुआएं, क्या ये तीनों ही चीजें हैं? हमारा उत्तर, हमारा एनालिसिस हमें बताएगा कि नहीं है। हमारा स्टॉक कम है, मन में किसी ना किसी के प्रति घृणा और नफरत भरी हुई है, सम्मान कम है। किसी चर्च में एक पादरी आया और हजार लोगों की सभा थी और सभा में उसने कहा कि तुम में से कोई है जिसके मन में जरा भी 1% भी घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, डिसलाइक हेट्रेट नहीं है, किसी के प्रति जरा भी ग्रज नहीं है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बड़ा दुखी हुआ, फिर देखा पीछे एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहा है और उसे देखते ही उस पादरी को इतनी खुशी हुई, कम से कम एक व्यक्ति तो है पूरे चर्च में, अगर एक भी इस चर्च में हो तो हम सबका उद्धार हो सकता है। एक आत्मा इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध कि जिसके मन में जरा भी घृणा का भाव नहीं है। उसने देखा कौन वो व्यक्ति है जिसने हाथ खड़ा किया है, देखता है एक बूढ़ा 104 वर्ष का व्यक्ति है। उसको खड़े करते हैं, सारी सभा को कहते हैं देखो उसको, दर्शन करो उसका। सारी सभा मुड़ मुड़ कर उसको देखती है, उसे सामने बुलाया जाता है, कहते हैं कि आप अपना अनुभव सुनाओ कि कैसे आपने इस घृणा के प्रति इतना उससे ऊपर उठ गए और विजय प्राप्त कर ली घृणा पर, जबकि हम में से हर एक किसी न किसी से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कुछ न कुछ तो हम में भरा है। वो कहता है वो सारे लोग जिनसे मैं घृणा करता था सब के सब मर गए, अगर एक भी आज होता तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं, वो सारे के सारे मर चुके, अब किससे घृणा करूं? हमारा घृणा रहित होना भी दूसरों के जिंदा होने और मरने पर निर्भर है। ये घृणा, ये प्रेम, ये शुभ भावना सच्ची शुभ भावना नहीं है कोई भी, ये एक आंतरिक अभ्यास है जो रोज करना है। एक एक आत्मा को देखो, क्यों उसके प्रति देखते ही नफरत आती है, देखते ही घृणा, देखते ही लगता है ये यहां से हट जाए, बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो, बाबा ये कभी छुट्टी पे क्यों नहीं जाता, बाकी सब लोग छुट्टी पे जाते हैं, इनको भी तो कभी छुट्टी दो, इनके घर में भी तो कुछ हो जाए, कभी कुछ होता ही नहीं, लगे रहते हैं इधर, खुद भी परेशान और हमको भी परेशान। सबसे पहली चीज इस मंत्र से जो होती है, मंत्र है शुभ भाव, शुभ कामना और शुभ दुआएं, स्वयं और दूसरों को शुद्ध वाइब्रेशंस का अनुभव। क्या कहा बाबा ने, जो पहली चीज होगी इससे खुद को भी अनुभव होगा शुद्ध वाइब्रेशंस का, और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह आत्मा घृणा रहित है, घृणातीत, नष्टो घृणा, नष्टो नफरत। ये बहुत लंबा अभ्यास है और सूक्ष्म अभ्यास है, क्योंकि मन के तल, मन के लेयर्स, परतों में छिपी है घृणा। दूसरे आगे जाते हैं तो अचानक कुछ होने लगता है, हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, कोई कान में आके कह दे कि वो दूसरा भाई तुमसे अधिक नम्र है, मेरे से अधिक, कोई कान में आके कह दे उसका ज्ञान युग तुमसे अच्छा है, कोई कान में आके कह दे वो अच्छा बोलता है तुमसे, उसका चिंतन तुमसे ज्यादा अच्छा है, उसका योग तुमसे, पर दिखाए कैसे, क्योंकि हम दिखाएंगे तो हम कम योगी ठहरे, इसके लिए हम भी तारीफ करेंगे, हाँ वो तो बहुत अच्छा है, पर एक एक शब्द बोलते हुए अंदर जो दर्द और पीड़ा और टीस उठ रही है वो परम धाम तक बाबा को छोड़कर और किसी को नहीं पता, किसी की स्तुति, तारीफ, महिमा, बाकी किसी में कोई स्किल है उसकी तारीफ करने में तो, और जो मरे हुए हैं उनकी तारीफ करने में तो जरा भी कुछ नहीं जाता है, और जो बहुत दूर है जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है उनकी तारीफ आराम से की जा सकती है। पर जो हमारे साथ साथ ही निकले और हम दोनों साथ साथ ही थे और वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए और लोग उसकी महिमा कर रहे, तब मुश्किल है। और कोई ये भी कहते तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते उसके जैसा, आग। मैं सहनशीलता का अवतार हूं, दूसरों की स्तुति सहन करते हुए भी स्तुति सहन करने के लिए समान का अभ्यास। क्या अभ्यास? कि मैं सहनशीलता का अभ्यास, वो तुमसे बड़ा योगी है, मैं महान योगी हूं, मैं सहनशील हूं, सब सहन कर लूंगा। अच्छा है अभ्यास। सबसे पहली चीज जो ये जादू मंत्र करती है, क्या? शुद्ध प्रकंपन। ये संसार प्रकंपन से बना है, ओशन ऑफ एनर्जी। प्रकंपन का अनुभव खुद को भी और उसे भी, पहला। दूसरा, एनर्जी इकोनॉमी। बोलने में जो ऊर्जा नष्ट होती है वो क्या हो जाएगी? पच जाएगी। मनसा सेवा से, वाचा सेवा में ऊर्जा जाती है, मनसा से ऊर्जा संग्रहित होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी इकोनॉमी। तो मनसा सेवा को बढ़ाना है। जैसे उसमें बिजी रहते हो, उसमें इसमें बिजी रहो। जैसे वाणी की सेवा की तीन शब्द थे, वो निरंतर हो गई है, वो नेचुरल हो गई है, उसी तरह ये निरंतर नेचुरल और साथ साथ हो, ये तीन शब्द कहे बाबा ने। मनसा सेवा कैसी हो? निरंतर नेचुरल हो जाए, साथ साथ हो और स्वभाव स्वाभाविक। जैसे वो सेवा करते हो, उस सेवा के बिना क्या होता है? नहीं करते हो तो खाली खाली लगता है, कुछ करूं कुछ करूं। उसी तरह मन से एक एक आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना। क्यों उसके प्रति नफरत है? उसने कुछ भी किया हो, परमात्मा आदेश है, परमात्मा ऑर्डर है सभी के लिए। यही जादू मंत्र है। सेकंड पॉइंट। तीसरा, सफलता सहज होगी। जब मनसा सेवा को वाणी की सेवा के साथ जोड़ दोगे तो सफलता सहज होगी। केवल वाणी से सेवा करने वाले तो बहुत है, संसार में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, बहुत है। पर हमारी वाणी के साथ साथ मनसा है, श्रेष्ठ मनसा, शुभ संकल्प है उनके लिए, निस्वार्थ संकल्प है। चौथा, समय बच जाएगा। ये जादू मंत्र क्या कर देगा? समय को बचा देगा। और टाइम इज एनर्जी, टाइम इज करेंसी, समय ही तो है। जो हमारे हाथ से निकला जाता है प्रतिपल, तो वो हर चीज करनी है जो हमारे समय को बचा दे। चौथा, पांचवा, मेहनत कम। केवल वाणी से सेवा कर रहे हैं, केवल कर्मों से सेवा कर रहे हैं, उसमें मेहनत है। पर मन की जो सेवा है बहुत सहज है। सहज शुरुआत में तो नहीं होगी, धीरे धीरे रोज के अभ्यास से। रोज अभ्यास अमृत वेदा। बार बार आत्माओं को देखो, इमर्ज करो, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बातें करना, आत्माओं में शक्ति भरना, आत्माओं से माफी मांगना, आत्माओं से आत्माओं को माफ करना, आत्माओं को धन्यवाद देना। क्योंकि हमारे एक दूसरों के साथ कई जन्मों के बहुत कड़े हिसाब किताब है, हमें पता नहीं है किस जन्म में हम क्या थे किसके साथ। पुराने एक्टर्स नए रंगमंच पर, नए रूप में, नए वेश में आके है। वही पुराने किरदार है, नए पुराने पात्र मंच पर आ गए। इसलिए हिसाब चुक तो करने, किसने बदला है, क्या संकल्प लेकर ही शरीर छोड़ा था, इसके लिए बचपन से ही क्या इच्छा है, बदला। बचपन से ही की संकल्प है बदला, क्योंकि किसी जन्म में उसी संकल्प के साथ शरीर छोड़ा था और हम निमित्त थे उसके शरीर छोड़ने के, इसलिए उसकी निगाहें हमें ढूंढ रही है। और जिस दिन हम उसे मिल जाएंगे, हमें वो छोड़ेगा नहीं। कुछ तो मिल चुके हैं, कुछ अभी बाकी है। एक उन आत्माओं को भी देखो कि जिनके साथ अभी तक कोई हिसाब नहीं है पर होने वाला है, उनको भी किरणें डालते जाओ। इसके लिए अमृत वेला उन आत्माओं को इमर्ज करो जो सारे दिन में नए हिसाब आने वाले हैं, नई आत्माएं आने वाली है, अभी तक जो चालू ही नहीं हुए, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं, पर वो है। हर दिन नया है, नई आत्माएं आएगी, उनको पहले से ही क्या कर देना, उनसे पहले ही माफी मांग लो। पहले ही माफी मांग लो उनसे, माफी मांगना, माफ करना, ये काम रोज चालू रहे अमृत में। माफ करने से भी ज्यादा माफी मांगना, पता नहीं किस किस को हमने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, पता नहीं किस किस को हमने किस तरह से सताया है। बहुत कुछ कर रखा है पूर्व जन्मों में, इसके लिए इस जन्म में अज्ञात सी बातें होती रहती है, समझ ही नहीं आती, कंफ्यूजिंग। अचानक कोई आ जाता है, अचानक हिसाब, न लेन न देन, न कोई किसी से कोई मतलब। फिर भी चार दिनों के लिए कोई आत्मा आ जाती है, चार दिन हो ऊपर नीचे हो जाते सारा स्थिति और वो चली जाती है, और हम सोचते बैठे ऐसा क्यों हुआ, बाबा को खत लिखते ये नहीं होना चाहिए था। तो पांचवा मेहनत कम, छठवा बड़ी बातें भी छोटी हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें आएगी, परंतु यदि शुभ भाव है, शुभ भावना है, दुआएं निकल रही आत्माओं के प्रति, चाहे वो कुछ भी करे, हमारे मन से एक ही संकल्प इसका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबका बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबको सुख मिल जाए, सबका हित हो जाए, सब को परमात्मा प्रेम का अनुभव हो जाए, सभी उसके प्रेम में लीन हो जाए, सब खुश हो जाए, मुझसे अधिक खुश हो जाए और सबसे अधिक खुश हो जाए। कितना अच्छा संकल्प है, किसी एक आत्मा के लिए यह संकल्प करो कि तुम खुश रहो, दूसरा मुझसे ज्यादा खुश रहो और तीसरा सबसे ज्यादा खुश रहो। अब इससे बड़ा और क्या संकल्प है, तुम कैसे रहो खुश, किससे ज्यादा खुश, मुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा। और अपने लिए संकल्प, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरी खुशी छीन ले, अभी तक ऐसा कोई आज तक सूरमा आया नहीं है संसार में जो आए और मेरी खुशी नष्ट कर दे, कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अपनी खुशी पर ऐसी कुंडली मारकर बैठ जाना है, सातवा मन की हलचल समाप्त। शुभ भावना, शुभ कामना और दुआओं से क्या होगा, जो मन की हलचल होती रहती है, डिस्टर्बेंस होते रहता है बार बार, तो अपने आप शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आठवां पुरुषार्थ में जो दिल शिकस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। पहले तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि हम अभी मंजिल से बहुत दूर है, वो वहां मंजिल और हम कहां। अभी तक हलचल चालू है। पुरानी इस मुरली में बाबा ने एक और चीज कही है, पुरानी दुनिया में बुद्धि तो नहीं जाती, दुख दर्द उदासी, दुख दर्द परेशानी वाली वो दुनिया का अनुभव अब तो नहीं होता। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी तुम नई दुनिया में हो, तुम नए युग में हो, तुम संगम युग पर हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो। उस दुनिया में रहते हुए भी तुम नई दुनिया में हो, इसके लिए पुरानी दुनिया की बातें दुख अशांति और परेशानी अब प्रभावित तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। वरदान आज का डबल लाइट, प्रभाव से प्रभाव रहित ऊंची स्थिति में रहने वाले, एक संकल्प में स्थिर रहने वाले सार, मैं बाबा का बाबा मेरा, इस संकल्प में समा जाओ। तो आठवा डिप्रेशन नहीं, आठवा उदासी नहीं, आठवा किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं, किसी भी प्रकार से दिल शिकस्त डिसहार्टन्ड नहीं। नौवा और सबसे महत्वपूर्ण, संगठन में चलना आसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पेपर है, क्योंकि बाबा से हमने संगठन तो कभी मांगा ही नहीं था। क्या कहा था, भक्ति में तुम आ जाओ, वो आ गया। तुम चाहिए, वो मिल गया। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, तुम पर बलिहार। किसने ऐसा मांगा था कि जब आओ तो एक फौज लेके आना, एक ऐसी गैंग जो हमें तिल तिल तड़पाए और हिसाब चुकतु कराए हमसे। ये कहां से आ गया, ये तो मांगा ही नहीं था। तुम चाहिए बस, मैं और मेरा बाबा, ये सब हटाओ। क्या करूं, इनका इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं है बाबा, एक भी गुण किसने दिखाई नहीं देता। पता नहीं तुमने कैसे चुन लिया इसको, क्या देख लिया इसने, मुझे तो एक भी नहीं दिखता है। अमृत वेला इतने उसके उसका चिंतन करता हूं, पर अवगुणों के सिवा कभी कुछ नहीं दिखा। पता नहीं इसको कैसे बाबा ने, और पता नहीं बाबा इसके द्वारा क्या कराना चाहता है। ऐसा तो कुछ लक्षण अब तक दिखाई नहीं दे रहे सेवाओं की, कि भाई ये इसके द्वारा कोई बड़ी सेवा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार में चलना, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही यहाँ पर। अगर इस परिवार की हरेक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं देते रहोगे तो उसके मन के अंदर जो संस्कार है वो दब जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। दूसरा, वो हमारा सामना नहीं करेगी, वो आत्मा हमारा सामना नहीं करेगी। यदि आत्माओं के द्वारा बार बार पेपर आ रहे, आत्माओं के द्वारा बार बार सामना करना पड़ता है, तो जरूर हमारे भी मन में उनके प्रति सूक्ष्म घृणा नफरत कुछ तो है, उसका ही वो प्रतिफलन है। हमारे सूक्ष्म संकल्प उन तक पहुंच रहे हैं, हमें वो अहंकारी दिखते हैं, इसका अर्थ है हम में उनसे भी ज्यादा अहंकार है। हमें उनमें अवगुण दिखाई देते हैं, अर्थात हमारे अंदर वो है। हम दूसरों के अवगुण डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके अर्थात हम उसमें एक्सपर्ट है। किसमें, अवगुणों में। अवगुणों पर हमारी पीएचडी इतनी पक्की है कि हमें दिखाई देता है कि ये झूठ बोल रहा है। एकदम डिटेक्ट कर लिया किसी का झूठ, अर्थात तुम भी झूठ में कोई कम एक्सपर्ट नहीं हो। नहीं तो कोई साधारण सा व्यक्ति आता है गांव का, उसे जो बताओ वो बेचारा मान लेता है, क्योंकि उसे झूठ का कोई अनुभव नहीं है। हमें एक्सपर्ट है, हम इसलिए डिटेक्ट करते हैं। तो इस परिवार की आत्माओं को रोज रोज इमर्ज करना है, अपने डिपार्टमेंट की आत्माओं को रोज इमर्ज करना, अपने घर की आत्माओं को, सेवा केंद्र की आत्माओं को, इंचार्ज, साथी, जूनियर, स्टूडेंट, बाहर वाले, लौकिक वाले, मधुबन, सारी आत्माओं को बार बार देखना है। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतु होंगे, वो हिसाब किताब बड़े हल्के हैं, ये कड़े हैं। पर क्या कहा, दो बातें, उनके मन के जो संस्कार है वो दब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा वो सामना नहीं करेगी, जादू जैसा हो जाएगा। ये है जादू मंत्र जो रोज हमारा सामना करती है, रोज हमसे नफरत करती है, रोज हमारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती है, अचानक एक दिन वो शांत हो जाएगी, हट जाएगी, चुप हो जाएगी, बिना हमारे कुछ कहे। नहीं तो उसे कितना भी उसके साथ बैठकर डिस्कशन करके समझाओ, पूछो, कोई बताता है? हम किसी से जाके पूछे कि तुमने मेरा अपमान क्यों किया तो बता देगा वो? कभी नहीं बताएगा। विधि ही गलत है, विधि है सूक्ष्म, विधि है मनसा, वाइब्रेशंस। आत्माओं के संकल्पों को अपने मन के सूक्ष्म वाइब्रेशन से बदलना है। तो ये था नौवा, और दसवा आप बताएंगे, विहंग मार्ग की सेवा। क्या हो जाएगा? विहंग मार्ग की सेवा। बाबा ने कहा क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी वाली आत्मा को निकालना है। प्रजा भी कैसी हो, नंबर वन प्रजा, प्रजा किसकी है, ब्रह्मा की प्रजा है, प्रजा किसकी है, विश्व महाराजन की प्रजा है, दो प्रकार, एक सहयोगी और दूसरे स्नेही। कम से कम फर्स्ट नंबर की प्रजा वो हो जो परमात्मा स्नेही हो, जिन्होंने परमात्मा स्नेह का अनुभव करा है। तो सुबह सुबह अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करो और उनके अंदर डिवाइन लाइट, डिवाइन माइट और डिवाइन लव भर दो। डिवाइन लाइट, डिवाइन माइट और डिवाइन लव। डिवाइन लाइट अर्थात ज्ञान, डिवाइन माइट अर्थात शक्ति, डिवाइन लव अर्थात प्रभु प्रेम। लोग पूछते हैं हम दूसरों को क्या दें सकाश में, ये तीन चीजें दो। ये नहीं कहो इसका ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये ज्ञान में आ जाए, सेंटर में आ जाए, इसका ऐसा कर दो, उसका वो सहयोगी बन जाए, कुछ नहीं। दिव्य प्रकाश उसमें भर जाए, दिव्य शक्तियां उसमें भर जाए और प्रभु प्रेम उसमें भर जाए, बस अपने आप आ जाएगा। पहला कदम सहयोगी, दूसरा कदम स्नेही, तीसरा कदम समर्पण। समर्पण ना भी हो परंतु स्नेह तक तो पहुंचे, तब वन 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 प्रजा। विहंग मार्ग की सेवा, क्वालिटी वाली सेवा। रूहानी खेती का वर्णन कहा किया यहां पर बाबा ने, एक है धरा, एक है हल, एक है बीज, एक है पानी और एक है फल। वाचा सेवा क्या है? हल चलाना, धरनी है, सीधा करने के लिए हल चलाया जाता है, फिर बीज डाला जाता है, प्राप्तियों का पानी और फिर फल। तो मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बीज है। रूहानी खेती कितना अच्छा टॉपिक है, ये चिंतन करो इस पर कल। रूहानी किसान हैं हम और रूहानी खेती करने वाले, तो खेत में जिन जिन औजारों का उपयोग किया जाता है उनका यहाँ क्या महत्व है। खेती में जो जो चीजें की जाती है वो रूहानी, उनका क्या अर्थ है, कटाई बुनाई और क्या क्या वो जो भी होता है उसमें सब कुछ, हार्वेस्टिंग, सीड, खत, पानी, वो सब का स्पिरिचुअल फार्मिंग। उसके सारे शब्द इधर, अलौकिक में उसके क्या अर्थ है वो इधर, ये चिंतन का टॉपिक है। तो क्या करो, बाबा ने कहा हल चलाओ मन की भूमि पर, विहंग मार्ग की सेवा। तो कितनी बातें हो गई, 10। मधुबन को भी याद किया है, चुचुल पर वो दिल पर बेहद के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाने वाले, घर क्या है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस? वो है सेवा स्थान। एक बहुत शक्तिशाली पॉइंट इस मुरली में है, बाप के संकल्प ने तुम्हें वहां रखा है जहां अभी हो। बुद्धि की टचिंग से उस सेवा स्थान पर हो, बाप के संकल्प ने तुम्हें वहां रखा है। इसलिए ये नहीं कहो हमें मधुबन ही जाना है, हम वहीं रहेंगे मधुबन में जाके। बाप के संकल्प ने तुम्हें उस सेवा स्थान पर रखा है, टाइम होगा तो आ जाओगे। अगर उसके संकल्प ने वहां रखा तो उसका संकल्प भी यहां भी ले आएगा। मधुबन सेवा स्थान, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। मधुबन के लिए दूसरा शब्द क्या कहा? मधुबन है तुम्हारी जन्मभूमि। वो है सेवा स्थान, ये है जन्मभूमि। जो चुल पर वो दिल पर, तो मधुबन को याद किया। तो 10 बातों में सबसे पहली बात प्रकंपन, वाइब्रेशंस का, शुद्ध वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस का तुमको भी अनुभव होगा और दूसरों को भी। दूसरों को ना भी हो, खुद को तो हो रहा है, उन तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे। दूसरा एनर्जी इकोनॉमी, एनर्जी बच जाएगी, मन की सेवा को बढ़ाओगे तो बिजी हो जाओगे उसमें। तीसरा सफलता, सेवाओं में सफलता अधिक बढ़ जाएगी, अभी जितनी हो रही अभी तो हो रही है और बढ़ जाएगी। चौथा समय, पांचवा मेहनत कम, मेहनत तो इसमें भी है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। अगला बड़ी बातें जो है वो छोटी हो जाएगी, और जो बड़ी बातें होती है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जीवन को थोड़ा एक कॉमेडी के रूप में लेना है। जो एकदम सीरियस रहते हैं वो थोड़ा सा दुखी ज्यादा रहते हैं। यमराज पूछता है, प्राणी बता तुझे कहां जाना है, स्वर्ग में या नर्क में? प्राणी कहता है, प्रभु जी धरती से मेरा मोबाइल और चार्जर दे दो, मैं किधर भी रह लूंगा। किधर भी रह लूंगा, जहां भेजना है भेज दो। अगला क्या समाप्त हो जाए? मन की हलचल, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। अगला पुरुषार्थ में दुखी नहीं, उदास नहीं, दिल शिकस्त नहीं। एक दिन गिर गए फिर से खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं गिरे, गिरना और संभलने का मार्ग है। गिरे फिर से उठो, फिर से उत्साह, फिर से नया उमंग। चोर कभी दुखी हो जाता है? रोज चोरी करने जाता है, रात को खाली हाथ लौट कर आता है सुबह, पर दूसरी रात को फिर तैयार हो जाता है कि आज तो अच्छा हाथ मार कर ही आऊंगा। कभी उदास नहीं होता, कभी निराशा नहीं आती है और हम उदास हो जाते हैं। माया कभी उदास होती है? माया कभी थकती है? बिल्कुल नहीं, अथक है वो। अगला संगठन में चलना आसान, दूसरी आत्माओं तक क्या हो जाएगा उनको? उनके संकल्प संस्कार दब जाएंगे और सामना नहीं करेगी, पर तब तक उनके प्रति किरणें देते रहना रोज। अगला विहंग मार्ग की, विहंग अर्थात पक्षी, पक्षी मार्ग की सेवा, ऊंचाई फास्ट सेवा होगी। ऐसे कैसे? विहंग मार्ग की सेवा करने वाले ऐसे डबल लाइट रहने वाले, ऐसे दुखधाम से किनारा करने वाली आत्माओं को, ऐसे मैं बाबा का बाबा मेरा इस संकल्प में दृढ़ रहने वाली या समा जाने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सदगुरु आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे डबल सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे मनसा और वाचा का मेल, मनसा और वाचा का बैलेंस, ऐसे जादू मंत्र का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व, नया विश्व निर्माण करने वाली आत्माओं को, नवीनता अर्थात विशेषता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे विहंग मार्ग हो गया, ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, ऐसी सहयोगी आत्माओं को, स्नेही सहयोगी आत्माओं को, समीप के साथी आत्माओं को, ऐसे सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, क्या जन्मभूमि को याद रखने वाली आत्माओं को, मधुबन, वाह ऐसे बेहद के भंडारे थे, तुम बेहद के भंडार में रहते। दो प्रकार की प्राप्तियां भी बताई, कि यहां की एक वहां की। बाप की गारंटी कभी बदल नहीं सकती, कितना अच्छा वाक्य है। अगला, ऐसे ऐसे पास्टर सदगुरु मास्टर, ऐसे दिल पर सो चुल पर, ऐसे परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे नवीनता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल लाइट हो गया, ऐसे जादू मंत्र का क्या, जादू मंत्र करने वाली आत्माओं को मंत्र जाप संगम पर रहने वाली आत्माओं को, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी नई दुनिया में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।